एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक काफी चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, टिम एल्बर्टा की द किंगडम द पावर एंड द ग्लोरी।
बिल्कुल, ये किताब अमेरिकी इंजील ईसाई समुदाय के अंदर, मतलब ईसाई धर्म की वो शाखा जो बाइबल और निजी आस्था पर बहुत जोर देती है, उसके अंदर चल रहे एक गहरे संकट को खोलती है।
हाँ, और ये दिखाती है कि कैसे राजनीतिक ताकत की जो चाह है उसने इस पूरे धार्मिक आंदोलन को, खासकर पिछले कुछ सालों में, काफी बदल दिया है।
और ये बात सिर्फ अमेरिका या ईसाई धर्म तक ही सीमित नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दुनिया भर में देख रहे हैं ये पैटर्न, कैसे धर्म, राजनीति, राष्ट्रवाद, सत्ता, ये सब आपस में उलझ जाते हैं।
श्रीका, तो ये किताब हमें इन जटिल रिश्तों को समझने में थोड़ी मदद कर सकती है। इसके सबक शायद हमारे लिए भी कुछ मायने रखते हो।
हाँ, हो सकता है।
और ये साफ कर दें कि हमारी ये चर्चा किताब के उपलब्ध सारांशों और विश्लेषण पर आधारित है। हमारा इरादा किसी का पक्ष लेना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, हम बस एल्बर्टा ने जो मुद्दे उठाए उन्हें जसकतस एक संतुलित तरीके से रखने की कोशिश कर रहे
हैं। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से। ये टिम एल्बर्टा है कौन और इनकी बात में वजन क्यों है?
हाँ, ये जानना जरूरी है। टिम एल्बर्टा, देखिए, वो दी अटलांटिक मैगजीन के लिए लिखते हैं, जाने माने पत्रकार हैं, पहले पॉलिटिको में थे, चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट।
अच्छा।
उनकी पिछली किताब भी थी अमेरिकन कार्नेज, जिसने उन्हें अमेरिकी राजनीति, खासकर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, उसका एक बड़ा विश्लेषक बना दिया था।
लेकिन इस किताब के लिए सिर्फ उनका पत्रकार होना ही काफी नहीं है, शायद कुछ और भी है।
हाँ, वही सबसे खास बात है, उनका निजी अनुभव। वो सिर्फ बाहर से देखने वाले नहीं हैं, वो खुद एक इंजील पादरी के बेटे हैं।
ओह।
उसी माहौल में पले बढ़े हैं, मतलब वो अंदर की भाषा, संस्कृति, चिंताएं सब समझते हैं। वो जिसे कई बार मजाक में पीके यानी प्रीचर्स किड कहते हैं, वो हैं।
तो ये तो उन्हें एक डबल नजरिया देता होगा, अंदर वाले का भी और एक पत्रकार का वस्तुनिष्ठ नजरिया भी।
बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। वो कोई बाहर से हमला करने वाले आलोचक नहीं, बल्कि अंदर से चिंता जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं।
सुना है किताब की शुरुआत में उनके पिता के अंतिम संस्कार का कोई किस्सा है?
हाँ, एक बहुत मार्मिक किस्सा है, जहां चर्च के अंदर ही उन्हें राजनीतिक कड़वाहट का सामना करना पड़ा। कहते हैं वही अनुभव इस किताब को लिखने की एक बड़ी वजह बना।
समझ सकती हूँ। तो अब आते हैं किताब पर, क्या है इसका मूल निचोड़, क्या कहना चाहती है ये किताब?
देखिए, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि अमेरिकी इंजील समुदाय का एक बड़ा हिस्सा वो राजनीतिक ताकत और दुनियावी दबदबे के पीछे पड़ गया है।
अच्छा।
और इस चक्कर में उसने अपने जो बुनियादी आध्यात्मिक सिद्धांत थे, जो नैतिक पकड़ थी, उससे कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है।
एल्बर्टा इसके लिए कोई कड़ा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं शायद।
हाँ, वो इसे राजनीतिक शक्ति की मूर्ति पूजा कहते हैं, आइडोलैट्री।
मूर्ति पूजा,
मतलब ईश्वर की जगह राजनीतिक ताकत को पूजना, ये तो बहुत बहुत भारी बात है।
बिल्कुल,
एल्बर्टा का यही पॉइंट है। किताब ये सवाल उठाती है कि भाई, एक धार्मिक आंदोलन जो कभी कहता था कि हम दुनिया में हैं पर दुनिया के नहीं, वो कैसे इतना ज्यादा पक्षपात वाली राजनीति में फंस गया
कि उसकी अपनी पहचान ही धुंधली हो गई।
हाँ, कि उसकी अपनी रूहानी पहचान, उसकी आत्मा ही कहीं खो गई। ये सिर्फ कोई सियासी गलती नहीं है, ये गहरा धार्मिक संकट है उनके मुताबिक।
और ये किताब खास तौर पर इंजील चर्चों और रिपब्लिकन पार्टी के रिश्तों पर फोकस करती है, खासकर ट्रंप के दौर में।
हाँ, बिल्कुल, वो ट्रंप युग और उसके बाद के समय को बहुत बारीकी से देखती है, दिखाती है कि कैसे चर्च, जो प्रार्थना की जगह थे, वो धीरे धीरे सियासी मंच बनते गए।
पादरी भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं जैसे लगने लगे।
हाँ, और धर्म का जो मूल संदेश था, उस पर राष्ट्रवाद की राजनीति हावी होती चली गई।
तो किताब का मकसद क्या है, किसे समझाना चाह रहे हैं एल्बर्टा?
मुझे लगता है मकसद दोहरा है, एक तो खुद इंजील समुदाय के उन लोगों को झिंझोड़ना जो इस बदलाव से चिंतित हैं, और दूसरा बाहर के लोगों को ये समझाना कि ये सब हुआ कैसे, कैसे वो लोग जो पारिवारिक मूल्यों की बात करते थे, वो ट्रंप जैसे नेता के इतने कट्टर समर्थक बन गए।
और ये क्रिश्चियन राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है,
हाँ, कि ये ईसाई धर्म और अमेरिकी राष्ट्रवाद का जो घालमेल है, ये इतना ताकतवर कैसे हुआ? एल्बर्टा अंदरूनी बातचीत रिपोर्टिंग के जरिए दिखाते हैं कि कैसे धार्मिक भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया।
तो ये बदलाव हुआ कैसे? क्या ये अचानक हुआ या इसकी जड़ें और गहरी हैं?
नहीं, एल्बर्टा साफ कहते हैं, ये रातों रात नहीं हुआ, जड़ें गहरी हैं। करीब 1970-80 तक जाती हैं।
ओ, वो रिलीजियस राइट वाला दौर, जेरी फॉलवेल सीनियर।
हाँ बिल्कुल, जब गर्भपात को कानूनी बनाने वाले रोवी वेड फैसले और दूसरे सांस्कृतिक बदलावों के खिलाफ इंजील नेताओं ने लोगों को राजनीतिक रूप से एकजुट करना शुरू किया।
तो पहले शायद राजनीति में पढ़ना अच्छा नहीं मानते थे, पर फिर इसे जरूरी समझा जाने लगा।
हाँ, धीरे धीरे ये सोच बदली। पहले था कि दुनिया से बचकर रहो, अपनी आस्था पर ध्यान दो। फिर हुआ कि नहीं, दुनिया पर असर डालो, संस्कृति को बदलो। तो राजनीतिक सक्रियता न सिर्फ ठीक मानी जाने लगी, बल्कि एक तरह से धार्मिक ड्यूटी बन गई।
और फिर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को जैसे एक्सेलरेट कर दिया।
हाँ बिल्कुल, किताब इस पर बहुत विस्तार से बात करती है कि इंजील वोटरों ने ट्रंप को क्यों अपनाया, जबकि उनका अपना जीवन, उनकी बातें, वो तो कई इंजील मूल्यों के एकदम उलट लगती थी।
ये वाकई एक पहेली जैसा लगता है। क्या कहती है किताब इस बारे में?
अल्बर्टा का तर्क है कि ये रिश्ता काफी हद तक लेन देन वाला था, ट्रांजैक्शनल, एक सौदा।
सौदा? किस तरह का सौदा?
बहुत से वोटरों और नेताओं ने ट्रंप को एक बॉडीगार्ड की तरह देखा, जो उनके लिए कल्चर वॉर लड़ेगा।
कल्चर वॉर मतलब?
मतलब सांस्कृतिक लड़ाई, जैसे अदालतों में रूढ़िवादी जज बिठाना, धार्मिक आजादी के नाम पर कुछ खास रियायतें पाना। कुछ ने तो इनकी तुलना बाइबल के एक पुराने राजा साइरस से भी की।
साइरस? वो तो गैर यहूदी राजा था ना?
हाँ, जो खुद ईश्वर को नहीं मानता था, पर ईश्वर ने उसे अपने लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। तो वैसी ही उम्मीद ट्रंप से लगाई गई।
अच्छा, तो इस सौदे के लिए अपने पुराने उसूलों को नजरअंदाज करना पड़ा।
बिल्कुल, चरित्र, नैतिकता, निजी व्यवहार, इन सबको या तो अनदेखा किया गया या उनकी नई परिभाषा गढ़ी गई। और किताब इस सब के पीछे एक बड़े कारण पर जोर देती है, डर।
डर? किस चीज का डर?
सांस्कृतिक बदलाव का डर, देश के बदलने का डर, अपनी पहचान, अपना दबदबा खोने का डर। और ट्रंप ने इस डर को बहुत खूबी से पकड़ा और भुनाया।
तो ये जो सियासी गठजोड़ बना, इसका असर सिर्फ बड़े नेताओं तक रहा या नीचे आम चर्चों तक भी पहुंचा?
नहीं नहीं, अल्बर्टा दिखाते हैं कि ये बदलाव जमीन तक गया। छोटे छोटे आम चर्च भी राजनीतिक अखाड़े बन गए।
सच में?
हाँ, कई पादरी मंच से खुलकर राजनीतिक उम्मीदवारों का प्रचार करने लगे। रविवार की प्रार्थना सभाएं वो कभी कभी राजनीतिक रैलियों जैसी लगने लगी,
जहाँ धर्म से ज्यादा शायद सियासी बातें होती होंगी।
हाँ, धार्मिक उपदेश कम और सांस्कृतिक शिकायतें, राजनीतिक एजेंडा ज्यादा हावी हो गया।
और इसका नतीजा क्या निकला चर्चों पर, लोगों पर?
नतीजा कड़वा था।
बहुत
से चर्च राजनीतिक मतभेदों के कारण टूट गए। सालों पुरानी दोस्ती में दरार आ गई, परिवारों में बंटवारा हो गया।
बाप रे।
और एक और अहम चीज हुई, लोगों के लिए जानकारी का सोर्स बदल गया।
जानकारी का सोर्स मतलब मीडिया?
हाँ, कई लोगों के लिए उनके पादरी या धार्मिक किताबों से ज्यादा अहम हो गए कुछ खास न्यूज चैनल, टॉक रेडियो या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप पर घूमने वाले मैसेज।
ओ, वो इको चेम्बर वाली बात।
बिल्कुल, एक ऐसा माहौल बन गया जहां सिर्फ एक ही तरह की बात गूंजती थी। अलग सोच या सवाल उठाने की हिम्मत कम होती गई, इससे कट्टरता बढ़ी।
और ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी ये संकट कम नहीं हुआ, शायद और गहरा हो गया है।
हाँ, किताब बताती है कि कोविड-19 महामारी, फिर 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जो नस्लीय नाइंसाफी के खिलाफ प्रदर्शन हुए।
हाँ, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन।
और फिर 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ, इन सब घटनाओं ने चर्च के अंदर जो दरारें थीं उन्हें और चौड़ा कर दिया। जुल्म या धार्मिक आजादी पर हमला करार दिया गया।
विज्ञान पर शक।
हाँ, एक्सपर्ट्स पर शक करना आम हो गया। फिर नस्ली बराबरी की जो बात थी, उसे वोकिज्म या क्रिटिकल रेस थ्योरी, जिसे बहुत गलत तरीके से पेश किया गया, कहकर खारिज कर दिया गया। इससे चर्च के अंदर जो नस्ली बंटवारा था वो और गहरा हो गया।
और वो जो साजिशों वाली थ्योरीज चलती हैं, क्यूएनॉन वगैरह।
हाँ, अल्बर्ट बताते हैं कि क्यूएनॉन जैसी एकदम बेबुनियाद साजिशें और 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी के झूठे दावे, इन्हें कई चर्चों में बड़ी आसानी से जगह मिल गई। कई बार तो पादरी खुद इन्हें फैला रहे थे।
इसका अंजाम क्या हुआ फिर?
अंजाम कई स्तरों पर बुरा था। चर्चों में अटेंडेंस कम हुई, खासकर नौजवान पीढ़ी, वो दूर हो गई। बाहर की दुनिया में चर्च की साख, उसका भरोसा, उसे बहुत धक्का लगा। और सबसे दुखद, जैसा मैंने पहले कहा, लोगों के आपसी रिश्ते, उनमें बहुत कड़वाहट आ गई।
तो ये पूरी कहानी सुनकर कुछ बड़े थीम या सबक साफ नजर आते हैं ना?
हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे अहम है आध्यात्मिक अधिकार का दुरुपयोग। मतलब कैसे धर्म गुरुओं ने अपने पद, अपने प्रभाव का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया, ये भरोसे का खून करने जैसा है।
और दूसरा बड़ा मुद्दा, वो क्रिश्चियन राष्ट्रवाद का उभार।
हाँ, ये सिर्फ देशभक्ति नहीं है, ये एक विचारधारा है जो मानती है कि अमेरिका मूल रूप से एक ईसाई देश है और उसे वैसा ही रहना चाहिए। अक्सर इसमें दूसरी आस्थाओं या सेक्युलर सोच के लिए जगह कम होती है। अल्बर्टा इसे पारंपरिक ईसाई धर्म के लिए खतरनाक मानते हैं।
तीसरा, जिसे हम कह सकते हैं ईसाई मूल्यों का त्याग।
बिल्कुल, नम्रता, ईमानदारी, गरीबों के लिए दया, ये सब बुनियादी ईसाई गुण हैं। लेकिन राजनीतिक जीत के लिए इन्हें या तो ताक पर रख दिया गया या फिर तोड़ मरोड़ दिया गया। जब जीत ही सब कुछ हो तो सिद्धांत बोझ लगने लगते हैं।
ये चीज तो शायद हम अपने आसपास भी कभी कभी महसूस करते हैं।
हाँ, कि किसी बड़े मकसद के नाम पर छोटी छोटी सही गलत की बातें भुला दी जाती हैं।
चौथा पॉइंट भी बहुत सोचने वाला है, खुद को पीड़ित दिखाने का राजनीतिक इस्तेमाल।
हाँ, विक्टिमहुड का वेपनाइजेशन, मतलब ताकतवर होते हुए भी इंजिली समुदाय के एक बड़े हिस्से में ये भावना बहुत गहरी है कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम खतरे में हैं।
अच्छा,
अल्बर्टा दिखाते हैं कि कैसे इस भावना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया
अपनी कट्टर बातों को सही ठहराने के लिए।
हाँ, और अंदर से उठने वाली आलोचना को दबाने के लिए भी। देखो, हम पर तो वैसे ही हमला हो रहा है, तुम भी हमारी आलोचना कर रहे हो।
और आखिर में धर्म के मूल संदेश का ग्रहण।
सही, किताब का तर्क है कि ये सियासी लड़ाई, ये कल्चर वॉर, ये इतने हावी हो गए कि ईसाई धर्म का जो असल संदेश था, निजी मुक्ति, रूहानी बदलाव, प्रेम, सेवा, वो सब पीछे छूट गया। चर्च का मुख्य काम जैसे बस राजनीतिक लड़ाई जीतना रह गया।
अल्बर्टा की किताब में कुछ ऐसी लाइनें या विचार भी होंगे जो इस पूरे संकट को एकदम सटीक पकड़ते हों, कुछ यादगार बातें?
हाँ, हैं। एक तो वही जिसकी हमने बात की, कि समुदाय ने राजनीतिक ताकत का सुनहरा बछड़ा बना लिया है, ईश्वर की जगह उसी की पूजा हो रही है। ये सीधा बाइबल का रेफरेंस है, मूर्ति पूजा का आरोप। एक और बहुत शक्तिशाली विचार है कि चर्च देश की अंतरात्मा, कॉन्शियंस ऑफ द नेशन होने के बजाय एक राजनीतिक आंदोलन का पादरी, चैपलिन टू पॉलिटिकल मूवमेंट।
मतलब जो नैतिक प्रहरी का रोल था वो छोड़ दिया।
हाँ, वो भविष्यवाणी वाली, सच बोलने वाली भूमिका खो दी है। अब बस एक खास राजनीतिक खेमे को धार्मिक सहारा देने का काम रह गया है।
और ट्रंप के समर्थन पर वो बात।
हाँ, कि लोगों ने एक पादरी प्रमुख के लिए वोट नहीं किया, बल्कि एक बॉडीगार्ड के लिए वोट किया। ये दिखाता है कि डर और असुरक्षा ने नैतिक नेतृत्व की चाह को कैसे दबा दिया। सुरक्षा पहले, सिद्धांत बाद में।
और क्रिश्चियन राष्ट्रवाद पर वो झंडे और क्रॉस वाली बात।
हाँ, कि झंडा और क्रॉस खतरनाक रूप से आपस में घुलमिल गए हैं। देश का झंडा और धर्म का क्रॉस इतने मिल गए कि राष्ट्रीय पहचान और धार्मिक पहचान का फर्क ही मिट सा गया है। ये एक चेतावनी है।
तो ये सारी बातें सुनकर जाहिर सवाल उठता है कि भाई, हम इससे क्या सीखें? क्या ये सिर्फ अमेरिका की कहानी है या इसके सबक हमारे समाज, हमारे देश के लिए भी हैं?
मेरे ख्याल में सबक तो बहुत गहरे और यूनिवर्सल हैं। ये हमें दिखाता है कि किसी भी धर्म के लिए, कोई भी धर्म हो, राजनीतिक ताकत के पीछे अंधाधुन भागना कितना रिस्की हो सकता है।
क्यों? क्या खतरा है उसमें?
खतरा ये है कि सत्ता का नशा धर्म के मूल सिद्धांतों को ही भुला देता है। ये धार्मिक नेताओं को याद दिलाता है कि अपनी नैतिक विश्वसनीयता, अपना आध्यात्मिक मिशन बचाने के लिए शायद सियासी जोड़तोड़ से एक दूरी बनाए रखना जरूरी है।
और वो बंद सूचना तंत्र वाली बात भी अहम है।
हाँ, इको चेम्बर का खतरा। जब हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें पसंद है, चाहे धर्म हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, तो हम सच से दूर जा सकते हैं। अलग अलग सोर्स देखना, सवाल पूछना, ये बहुत जरूरी है।
समाज में जो आजकल बहस का माहौल है, उसके लिए भी इसमें कुछ सीखने को है।
बिल्कुल, ये समझने में मदद करता है कि कैसे डर, पहचान की राजनीति और ये हम पीड़ित हैं वाली सोच, ये कैसे समाज को बांट सकती है और समझदारी भरी बहस को खत्म कर सकती है।
और शायद सबसे बुनियादी बात, धर्म और सत्ता को अलग रखने की जरूरत।
हाँ, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट वाली बात, न सिर्फ लोकतंत्र के लिए बल्कि खुद धर्म की अपनी इंटेग्रिटी, अपनी पवित्रता के लिए भी ये जरूरी है।
तो इस पूरी काफी गंभीर चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे, आखिरी ख्याल क्या है?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि ताकत, खासकर राजनीतिक ताकत, उसमें भ्रष्ट करने की एक अंदरूनी क्षमता होती है। जब कोई आध्यात्मिक आंदोलन, कोई धार्मिक समूह सत्ता पाने और उसे बनाए रखने को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना लेता है।
हाँ,
तो वो अपनी आत्मा, अपना असल मकसद खोने का खतरा उठाता है।
किताब का शीर्षक ही यही कहता है ना?
हाँ,
किंगडम पावर ग्लोरी।
हाँ, कि जब जोर किंगडम यानी ईश्वर के राज की बजाय पावर यानी दुनियावी ताकत पर आ जाए, तो ग्लोरी यानी महिमा, नैतिक चमक, वो अपने आप फीकी पड़ जाती है।
और मेरे लिए ये किताब एक चेतावनी तो है ही, पर शायद एक उम्मीद भी है कि आत्ममंथन हो सकता है। अल्बर्टा का अंदरूनी व्यक्ति होना इसे खास बनाता है। वो आलोचना कर रहे हैं पर दर्द के साथ। ये दिखाती है कि कैसे एक आस्था जो दुनियावी ताकतों को ठुकराने वाले मसीहा पर आधारित थी, वही दुनियावी ताकत के पीछे भागने लगी।
ये सवाल हमें अपने समाज और अपने जीवन में भी पूछने चाहिए, कहीं हम भी किसी सुनहरे बछड़े के पीछे तो नहीं दौड़ रहे।
बिल्कुल, ये किताब सिर्फ अमेरिका के इंजीलिय ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी धर्म और राजनीति का घालमेल हो रहा है, वहाँ सोचने के लिए बहुत कुछ देती है।
सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।